नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष उद्बोधन की गहराई में उतर रहे हैं।
जी।
शीर्षक है युग परिवर्तनकारी महाक्रांति में सहभागी बने, और ये उद्बोधन है गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य का।
जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण आह्वान है पूज्य गुरुदेव का। उनका मानना था कि हम जिस समय में जी रहे हैं वो एक अभूतपूर्व क्रांति का दौर है, और इसमें हर किसी की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखती है।
हाँ, मतलब उनका जोर इसी बात पर था कि ये समय बस बैठकर देखने का नहीं है,
बिल्कुल सक्रिय होने का समय है।
तो चलिए समझते हैं फिर कि इस आह्वान के पीछे उनके मुख्य विचार क्या थे, कहाँ से शुरू करते हैं वो।
पूज्य गुरुदेव बात शुरू करते हैं इतिहास से।
ओके।
वो दो बड़ी क्रांतियों का जिक्र करते हैं, एक रामायण काल की, दूसरी महाभारत काल की।
अच्छा।
हाँ, वो याद दिलाते हैं कि कैसे उन क्रांतियों ने अपने अपने समय के जो बड़े आतंक थे, जैसे रावण हो गया या फिर कंस और दुर्योधन, उनको समाप्त किया।
हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, पर आज के समय से इसका क्या संबंध है?
यही वो एक दिलचस्प बात कहते हैं पूज्य गुरुदेव। हमारे आज के युग को, मतलब 20वीं सदी और उसके आगे के समय को, तीसरी महाक्रांति का समय बताते हैं, और ये पिछली दोनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी है, ऐसा उनका कहना था।
उनसे भी बड़ी? अच्छा।
जी, उनका तो ये भी मानना था कि जो भारत को आजादी मिली वो भी सिर्फ कुछ नेताओं या आंदोलनों का नतीजा नहीं थी।
तो फिर?
वो उसे एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा मानते थे। कोई दैवी शक्ति थी जिसने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंका।
ये तो एक अलग ही दृष्टिकोण है। तो क्या वो ये कह रहे थे कि ये सब, मतलब ये जो बदलाव है, ये पहले से तय था? ये महाक्रांति का ठीक ठीक मतलब क्या था उनके लिए?
हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। वो इस समय को युग संधि कहते थे।
युग संधि?
जी, यानी दो युगों के मिलने का समय। एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक और निर्णायक मोड़, जहां पुरानी जो जर्जर हो चुकी व्यवस्थाएं हैं वो ढह रही हैं।
बिल्कुल, और नई बेहतर व्यवस्थाओं का जन्म हो रहा है। वो कहते थे कि हजारों साल की गुलामी के बाद जब हमारी संस्कृति, हमारी चेतना लगभग दबसी गई थी, तो आजादी के बाद एक नए तरह का जागरण शुरू हुआ, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक।
अच्छा।
हाँ, और यही जागरण उनके लिए महाक्रांति का आधार था।
तो ये जो युग संधि का समय था, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था उनके अनुसार? उन्होंने कुछ समय सीमा भी बताई थी।
हाँ, बताई थी पूज्य गुरुदेव। इस युग संधि काल को खासकर जिस समय उन्होंने ये उद्बोधन दिया, उससे अगले करीब 12 वर्षों को, यानी सन 2000 तक, बेहद अहम मानते थे।
सिर्फ 12 साल?
हाँ, वो कहते थे कि ये 12 साल निर्णायक हैं, और वो सभी से आह्वान करते थे कि इन वर्षों को एक तरह के वनवास की तरह जिएं।
वनवास, उसका क्या मतलब था यहाँ?
मतलब ये कि अपने निजी सुख दुख, अपना लाभ हानि, इन सबको थोड़ा पीछे रखें, इनको गौण समझें, और अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपने साधन, वो सब समाज के भले के लिए लगाएं।
यानी लोक मंगल के लिए?
जी, लोक मंगल के लिए, या जिसे वो कहते थे भगवान का कार्य, मतलब सामूहिक उत्थान, नैतिक मूल्यों की स्थापना, इन सब कामों के लिए।
सुनने में तो ये बहुत बड़ी मांग लगती है, मतलब अपना सब कुछ छोड़कर समाज के लिए लग जाना।
हाँ, ये मांग बड़ी तो थी, लेकिन वो इसका उदाहरण भी देते थे, सबसे पहले अपना ही उदाहरण।
अच्छा, क्या बताते थे वो?
वो बताते थे कि कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी एक काम में लगा दिया, और बदले में उनका कहना था कि ईश्वर ने उन्हें 80 साल की उम्र में भी रोज 12-14 घंटे काम करने की शक्ति दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, और इतना बड़ा प्रभाव दिया।
हाँ, वो गायत्री शक्ति पीठों की स्थापना, लाखों पाठक।
जी, 2400 से ज्यादा शक्तिपीठ, उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के लाखों पाठक, ये सब उसी समर्पण का परिणाम था, ऐसा वो मानते थे। वो हनुमान जी का उदाहरण भी देते थे।
हाँ, कि उन्होंने सिर्फ राम का काम किया और वो स्वयं पूज्य बन गए।
बिल्कुल, उनका पूरा जीवन राम के काम के लिए था, और देखिए आज वो कहाँ है।
और इसमें वो अर्जुन वाली बात भी आती है ना, कि श्रेय तो उसी को मिलेगा जो इस बदलाव में हिस्सा लेगा।
एकदम सही कहा आपने, ये उनके आह्वान का एक बहुत मुख्य बिंदु है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि महाकाल यानी समय का जो चक्र है वो तो अपना काम करेगा ही, बदलाव तो होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता।
हाँ, ये तो है,
लेकिन जो व्यक्ति इस बदलाव की प्रक्रिया में अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से शामिल होता है, अपना योगदान देता है, उसे इसका श्रेय मिलता है, यश मिलता है।
अच्छा।
हाँ, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, याद है, कि ये शत्रु तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो बस निमित्त बनो और श्रेय प्राप्त करो।
हाँ, याद है। तो गुरुदेव का कहना था कि ये वैसा ही एक मौका है इतिहास बदलने का।
जी, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ये उनका स्पष्ट कहना था।
तो ये तो हुई प्रेरणा की बात कि क्यों जुड़ना चाहिए, लेकिन कैसे जुड़ना है, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए क्या रास्ते सुझाए उन्होंने, व्यवहारिक तरीके क्या थे?
हाँ, उन्होंने सिर्फ आह्वान ही नहीं किया बल्कि बहुत ठोस, बहुत व्यवहारिक रास्ते भी बताए।
जैसे?
पहला उन्होंने कहा कि छोटे छोटे समूह बनाओ, 5-6 जागरूक लोग मिलकर, जिन्हें वो कहते थे प्रज्ञा मंडल।
प्रज्ञा मंडल, हाँ सुनाए, ये क्या करते थे?
ये लोग मिलकर स्वाध्याय करते थे, मतलब अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, और फिर मिलकर समाज सुधार की छोटी छोटी योजनाएं बनाते थे और उन पर काम करते थे।
अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है।
हाँ,
और
दूसरा, उन्होंने साप्ताहिक दीप यज्ञ और सत्संग पर बहुत जोर दिया।
दीप यज्ञ मतलब दीपक जलाकर यज्ञ?
हाँ, दीपक जलाकर सामूहिक प्रार्थना, ध्यान और सत्संग, जहाँ अच्छे सकारात्मक विचारों पर चर्चा हो। ये एक तरह से सामुदायिक ऊर्जा को जगाने का, लोगों को जोड़ने का तरीका था।
और तीसरा कदम?
तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम था, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो गलत आदतें हैं, जिन्हें वो दुष्प्रवृत्तियां कहते थे।
जैसे नशा, दहेज, अंधविश्वास।
बिल्कुल, नशा, दहेज, ऊंच नीच, अंधविश्वास, फिजूल खर्ची, ये सब, इन सब को जड़ से खत्म करने की कोशिश करना, हर व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने प्रभाव क्षेत्र में।
तो इन सब कोशिशों का अंतिम लक्ष्य क्या था, क्या विजन था उनका?
लक्ष्य बहुत बड़ा था। लक्ष्य था 21वीं सदी को एक उज्जवल भविष्य देना, एक ऐसे महान भारत का निर्माण करना जो ज्ञान में, संस्कृति में, समृद्धि में महाभारत काल के भारत से भी आगे हो, उससे भी ज्यादा विशाल और प्रख्यात हो।
वाह, महाभारत कालीन भारत से भी आगे?
जी हाँ, पूज्य गुरुदेव मानते थे कि ये तैयारी का समय है, बीज बोने का समय है, जिसका फल अगली पीढ़ियों को मिलेगा, हमें बस अपना काम करना है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार हम सब एक असाधारण ऐतिहासिक मोड़ पर है, एक बड़ा सकारात्मक बदलाव दरवाजे पर है और इसमें हिस्सा लेने का मौका है।
हाँ,
और वो हर किसी को, चाहे कोई कितना भी छोटा या साधारण क्यों ना समझे खुद को, अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने के लिए बुला रहे थे, जैसे राम सेतु में गिलहरी ने किया था।
बिल्कुल सही संजा आपने, ठीक यही भाव था, जैसे गिलहरी, जैसे रीछ बंदर, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और पूज्य गुरुदेव अंत में ना एक सीधा सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के मन में।
क्या सवाल?
वो पूछते हैं कि क्या आप, मतलब हम सब, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएंगे, क्या इस महायज्ञ में अपनी छोटी सी ही सही पर आहुति देंगे, क्या हम इतिहास में श्रेय के भागी बनेंगे?
ये फैसला तो हर किसी को खुद करना है।
जी, ये फैसला हर किसी को खुद करना है, क्योंकि उनके अनुसार ऐसे मौके दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देते। अब ये सोचने वाली बात है कि उनके इस आह्वान का आज के समय में, आज की जो परिस्थितियां हैं, उसमें एक व्यक्ति के लिए और समाज के लिए क्या मतलब हो सकता है, और आज किस तरह की भागीदारी संभव है और जरूरी है।
ये सचमुच विचार करने वाली बात है।